निर्गमन अध्याय 33। आइए हम निर्गमन 33 अध्याय निकालें, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन का अपना अध्ययन जारी रखें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उन लोगों को जिन्होंने मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर जा, जिसके विषय मैंने इब्राहिम, इसाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। निर्गमन 33:1। यहां मूसा और यहोवा में वाद विवाद चल रहा था कि वो प्रजा वास्तव में किसके लोग थे। उन दोनों में से कोई भी उन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। पिछले अध्याय में सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा से कहा था, तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है। निर्गमन 32:7। तब पद 11 में मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तो बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। निर्गमन 32:11। इस पद में परमेश्वर और मूसा दोनों ही उन्हें अपनाने की इच्छा नहीं दिखा रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के मार्गों को त्याग दिया। उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया और वे उसकी उपासना कर रहे थे। वे परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे। अतः परमेश्वर लगभग त्याग चुका था। उसने कहा, तेरी प्रजा के लोग। मूसा ने भी उन्हें अस्वीकार करते हुए परमेश्वर से कहा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्याय 33 में भी ये वाद विवाद चल रहा है। यहोवा ने मूसा से कहा, तो उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा। अतः इस स्थान पर परमेश्वर पुनः उन्हें मूसा के हवाले करता है, जिसके विषय मैंने इब्राहिम, इसाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, और कनानी, एमोरी, हिती, पिरिजी, हिबी और यमूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हटीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। निर्गमन 33:2-3। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, अर्थात मैं तुम लोगों के मध्य नहीं चलूंगा, तू उन्हें ले और जा। सत्य तो ये है कि लोग परमेश्वर को गलत समझ बैठते हैं। वे इस पद को प्रायः परमेश्वर की कठोरता मानते हैं, परंतु ये वास्तव में परमेश्वर का अनुग्रह है। उनके साथ ना जाने के कारण हम देखेंगे, परंतु तुम हटीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। निर्गमन 33:2-3। दूसरे शब्दों में इस सच्चाई के कारण कि वे हटीले, अत्यंत विद्रोही और पाप करने को उतवाले रहते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर की अत्यंत पवित्रता के कारण वे अपनी पाप पूर्णता में भस्म न हो जाएं। इस प्रकार ये परमेश्वर के न्याय का दंड पड़ने के बजाय उसकी करुणा, अनुग्रह की बात है, कहीं वे नाश न किए जाए। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इसराइलियों को मेरा ये वचन सुना कि तुम लोग तो हटीले हो, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा, इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानू कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब इसराइली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया था। निर्गमन 33:4-7 पद। पद 7 का ये मिलाप वाला तंबू वो मंडप नहीं था जिसका नक्शा परमेश्वर ने मूसा को दिया था, इसलिए मूसा उसे मिलाप वाला तंबू कहता है। ये वो स्थान था जहां मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए जाता था और लोग अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े होकर दंडवत करते थे और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उन मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। निर्गमन 33:7। इस प्रकार उन्होंने मिलाप वाला तंबू लिया, वो स्थान जहां लोग परमेश्वर से भेंट करने को जाते थे। अब इससे पहले ये तंबू सभी गोत्रों के बीच में लगाया जाता था जहां सब गोत्र क्रम से उसके चारों ओर बसते थे। अब मूसा ने उस मिलाप वाले तंबू को उनके बीच में से उखड़वा दिया था और छावनी या बाहर दूर स्थान पर खड़ा करवाया था। अर्थ यह है कि अब परमेश्वर से भेंट करने के लिए उन्हें छावनी से बाहर निकलकर दूर जाना पड़ता था। यहां इसमें एक आत्मिक परिणाम है। यीशु को यरूशलेम नगर से बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया था, अर्थात लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए यहूदी व्यवस्था से बाहर निकलकर मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर से भेंट करना होगा। अब यहूदी व्यवस्था परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं था। अब क्योंकि मनुष्य पुरानी व्यवस्था का पालन नहीं कर पाया था, इसलिए वो रद्द की जाती थी और एक नई वाचा स्थापित की गई है जो यहूदी विधि विधान से हटकर है। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर से भेंट करने के लिए बाहर निकल आना आवश्यक है। एक यहूदी के लिए आवश्यक है कि वो परमेश्वर से मिलने के लिए यहूदी विधि विधान से बाहर निकल आए। अब परमेश्वर से संबंध बनाना हर एक मनुष्य के लिए उपलब्ध है, किसी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सबको मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आना है और वो वास्तव में इसराइल की छावनी से बाहर है। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था वो तंबू में से ना निकलता था। निर्गमन 33:8-11 पद। इस प्रकार मूसा ने तंबू को छावनी के बाहर खड़ा कराया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे मध्य में निवास न करूंगा कि कहीं तुम्हें भस्म न कर डालूं। इसलिए उसने मिलाप वाले तंबू को छावनी के बाहर खड़ा किया। मूसा छावनी के बाहर गया और तंबू में प्रवेश किया। उस समय सारे इसराइली अपने अपने तंबू से बाहर खड़े थे और उन्होंने देखा कि वो बादल का खंभा मिलाप के तंबू के द्वार पर उतर आया था जो उनकी अगुवाई करता और तंबू के द्वार पर आ जाता था। ये परमेश्वर की उपस्थिति थी जो मूसा के साथ उसके उपस्थित होने का प्रतीक था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे अपने अपने द्वार पर दंडवत करने लगे। निश्चय ही मूसा तंबू में जाकर लोगों के लिए एक बार फिर मध्यस्थता कर रहा है। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है। निर्गमन 33:12। वे दोनों किसी बात का निपटारा कर रहे थे। वो यहोवा से आमने सामने बातें करता था। हम इसे आगे ना निकल जाए क्योंकि थोड़ा ही आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। निर्गमन 33:18। और उसने कहा, मैं तेरे सामने होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। निर्गमन 33:19-20 पर जब मूसा ने परमेश्वर से आमने सामने बात की, इसका अर्थ ये नहीं कि बात करते समय वो परमेश्वर के मुख को निहार रहा था। कहने का अर्थ है मूसा और परमेश्वर के बीच स्पष्ट बातचीत होती थी, ये एक परस्पर वार्तालाप था। कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर कहता था और मूसा सुनता था, तथा मूसा कहता था और परमेश्वर सुनता था और उसका उत्तर देता था। इसे हम साहित्यिक भाषा में कथोपकथन कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उसने परमेश्वर के मुख मंडल को देखा। नया नियम में यीशु ने कहा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। अतः पवित्र शास्त्र को देखते हुए हमें ये तथ्य समझ में आ जाता है कि मूसा ने परमेश्वर के मुख मंडल को नहीं देखा था, क्योंकि इसी अध्याय में लिखा है, मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। पद 20। ये बड़ी रोचक बात है कि जब जब भी मनुष्यों ने परमेश्वर का दर्शन देखा, तब तब परमेश्वर का तेज उन्हें सूर्य देखने का सा लगा। अतः परमेश्वर की इस बेजोड़ महिमा को देखने में उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती थी कि उसका प्रकाश वैसा था। वे केवल महिमा के तेज को देख पाते थे, उसका रूप नहीं। मूसा का संपर्क परमेश्वर से ऐसा था कि वह उसे वार्तालाप करता था। इस बात को पढ़कर मुझे ईर्ष्या होती है। मैं भी अभिलाषा रखता हूं कि मेरा संपर्क भी परमेश्वर से ऐसा ही स्पष्ट हो। दूसरे शब्दों में वो मुझसे स्पष्ट संपर्क कर पाए। मेरे विचार में उसके साथ मेरा संपर्क काफी स्पष्ट है, परंतु अधिकांश समय उसकी वाणी सुनने में मुझे कठिनाई होती है। कभी तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने मुझसे बात की, परंतु कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा तो नहीं कि ये मेरे मन की उपज है या मेरा विचार मात्र है। अब आप सोचने लगते हैं, आपको ये कैसे ज्ञात होगा? बड़ी कष्टदायक प्रक्रिया होती है। यहाँ ऐसे समय भी आते हैं जब मैं संदेह करने लगता हूँ, क्या परमेश्वर ही मुझसे बात कर रहा था? जब मुझे बोध होता कि वो परमेश्वर ही था, तब मैं पछताता कि मुझे उसकी वाणी सुननी थी। मैं सोचने लगता कि इस बात को किसी के साथ तो बांटता कि वे उस व्यक्ति को जान पाते जिससे मेरा साक्षात्कार हुआ था। अतः अनेक बार घटना हो जाने के बाद मुझे समझ में आता कि वो परमेश्वरी था जो मुझसे बात कर रहा था। मुझे परमेश्वर की वाणी कानों में कभी सुनाई नहीं दी है, परंतु मुझे परमेश्वर द्वारा बात करने का अनुभव ऐसा निश्चित और सकारात्मक हुआ है कि मैं तुरंत जान गया कि ये परमेश्वरी है। कोई संदेह नहीं, मुझे स्पष्ट बोध था, इसमें कोई शक नहीं था, परंतु अनेक बार इसमें संदेह होता है। इस प्रक्रिया में विचित्र अनुभव होते हैं जिसको मैं बता नहीं सकता, ऐसे विचार जिसका उद्गम मैं स्वयं नहीं जानता। एक बार मैं फुटबॉल का खेल देख रहा था कि अकस्मात ही अपने मित्र से कह उठा, देखो अब एंथनी डेविस लेफ्ट से गोल मारेगा। मेरी आवाज बहुत दूर तक जाती है, मेरी पत्नी भी मुझे धीरे बोलने को कहती है। ऐसा ही हुआ और एंथनी ने गोल मारा। दर्शक मेरी ओर मुड़कर कहने लगे, आगे क्या होगा कुछ कहो। पता नहीं, मेरे मस्तिष्क में एक दृश्य उभरा और मैंने कह दिया, ये कैसा हुआ कि वो पूरा हो गया? मैं नहीं जानता, क्या ये एक संयोग मात्र था? हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का किसी खेल से क्या संबंध। ऐसी शक्ति हो तो आप रेस कोर्स में भी जा सकते हैं। मैं सलाह नहीं दे रहा, आप संभवतः सब कुछ खो दें, क्योंकि पता चले कि वो परमेश्वर का कहा नहीं था। ये सच है कि परमेश्वर मनुष्यों से बातें करता था। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यत वक्ताओं के द्वारा बातें करके, इब्रानियों 1:1, परमेश्वर ने नाना प्रकार और अनेक रूप में हमारे पूर्वजों से बातें की हैं। ये सदा ही उत्तेजनात्मक होता है जब हमें ये बोध होता है कि परमेश्वर ने मनुष्य से बात की है, वो हमसे बात करता है। ये बड़ा ही उत्तेजनात्मक घटना होती है। परमेश्वर हम में मसीह यीशु में होकर बात करता है। परमेश्वर का सबसे स्पष्ट प्रकाशन जो हमें प्राप्त होता है वो मसीह यीशु के द्वारा ही है। उसने अपने प्रिय पुत्र में होकर हमसे बात की है। यही कारण है कि मेरे विचार में परमेश्वर द्वारा किसी स्वर्गदूत के माध्यम से बात करने का महत्व या अर्थ नहीं है, क्योंकि उसने अपने प्रिय पुत्र के माध्यम से हमसे बात की है। ये एक बड़ी रोचक बात है कि मसीह के पुनरुत्थान के बाद मैं धर्मशास्त्र में कहीं नहीं पढ़ता कि किसी स्वर्गदूत का दर्शन किसी मनुष्य को प्राप्त हुआ हो। दर्शन हमें यीशु द्वारा ही प्रदान किया गया। निस्संदेह स्वर्गदूत ने जहाज में आकर पौलुस को दर्शन दिया और उसे भावी घटनाओं का प्रकाशन प्रदान किया, परंतु किसी धर्म शिक्षा का ज्ञान प्रदान नहीं किया था। कहने का अर्थ यह है कि मूसा को परमेश्वर से आमने सामने बात करने का अनुभव प्राप्त होता था। वो एक परस्पर वार्तालाप था जो बेजोड़ था। ऐसा व्यक्तिगत अनुभव किसी मनुष्य के पास नहीं है। इसके विषय में परमेश्वर आगे चलकर कहता है कि ये एक अनूठी बात थी। मूसा के समान परमेश्वर ने किसी से वार्तालाप नहीं किया। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। निर्गमन 33:12। मूसा ने परमेश्वर से कहा था कि तू मेरे साथ स्वर्गदूत को भेजेगा, परंतु तूने मुझसे उसका परिचय तक नहीं कराया। मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं। तू तो कहता है कि तू मुझे नाम से जानता है। तू कहता है कि मैंने तेरे दृष्टि में अनुग्रह दान पाया है और ऐसे संबंधों के उपरांत तू मुझे स्वर्गदूत दे रहा है कि अगुवाई करे। नहीं, मुझे स्वर्गदूत नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च से कम द्वारा संतुष्ट हो, क्योंकि परमेश्वर से कम किसी से संतुष्टि पाए। तू कहता है कि तू मुझे नाम से जानता है। तू कहता है कि मैंने तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाया है, तो स्वर्गदूत को मत भेज। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। निर्गमन 33:13-14 पर। इसी प्रतिज्ञा की तो मूसा को प्रतीक्षा थी, परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि वो परमेश्वर की आवश्यकता को समझता था। वो जानता था कि परमेश्वर क्या कर सकता है। उसे विश्वास नहीं था कि स्वर्गदूत क्या करेगा। परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव प्राप्त करने के बाद वो उसके स्थान पर अन्य कुछ नहीं चाहता था। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। निर्गमन 33:15। दूसरे शब्दों में, यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं चलेगी तो प्रभु मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। संभवतः ये सबसे बड़ा बुद्धिमानी का चुनाव था जो मूसा कर सकता था। वो वही रुका रहे जब तक कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ न जाए। हम परमेश्वर की उपस्थिति के अभाव में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप अपने आप किसी कार्य को करते हैं तो वो आपकी मूर्खता है। हम जहां भी हो हमें परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। यदि तेरी उपस्थिति साथ न जाए तो मुझे प्रभु यहां से मत भेज। ये कैसा जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? हम किस प्रकार सिद्ध करें कि हमने अनुग्रह पाया है? वास्तव में तो परमेश्वर की उपस्थिति में, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरे नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। निर्गमन 33:16-20 पद। अतः मूसा ने अपनी प्रार्थना रखी, मुझे अपना तेज दिखा। काश कि ये हमारे हृदयों की भी प्रार्थना बन जाए। हे परमेश्वर, मुझे अपना तेज दिखा, जिससे कि हम परमेश्वर की महिमा की झलक पा सके। हम पृथ्वी पर की बातों पर बहुत मन लगाते हैं। हम मनुष्य की बातों में बुरी तरह फंस जाते हैं, अर्थात मनुष्य निर्मित बातें और काम में लगे रहते हैं। काश हम परमेश्वर की महिमा निहारे। हे यहोवा, मुझे अपना तेज दिखा। पौलुस ने परमेश्वर के तेज की झलक देखी थी। परमेश्वर के निवास करने के स्थान का तेज ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यूहन्ना ने देखा था। इस तेज को देखने से पौलुस के जीवन में गंभीर परिवर्तन आ गया था। इसने उसे पूर्णतया बदल दिया था। इसने उसमें उस समय से पृथ्वी की बातों के प्रति वैराग उत्पन्न कर दिया था। आप ऐसे अनर्थ से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, जबकि परमेश्वर ने आपके लिए एक महिमामय स्थान तैयार किया हुआ है। प्रभु, मुझे तेरा तेज देखने दे। मैं आपसे हर दो के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर किसी भी प्रकार आपको अपना तेज निहारने दे, जिससे कि आप में संसार के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाए और मैं अपने पुरानी दिनाचार्य में न रह जाऊं। मैं अपने पुराने संसार से प्रसन्न न रहूं। मुझ में एक लालसा उत्पन्न हो जाए कि उस महिमा में और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करूं। हे प्रभु, मुझे अपना तेज दिखा। अपनी प्रजा पर अपनी महिमा प्रकट कर। बड़ी रोचक प्रार्थना है ये। मुझे अचंभा होता है कि आज मनुष्य ये प्रार्थना नहीं करता है। हम परमेश्वर की महिमा को निहारने की अभिलाषा क्यों नहीं रखते? प्रभु, हमें अपना तेज दिखा। परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा की कि वो पहले उसकी भलाई उसके सामने से निकलने देगा और तब वो अपना नाम उच्चारित करेगा। परमेश्वर अपना नाम मूसा पर ही प्रकट करने वाला था। ये नाम यहूदियों के लिए महान श्रद्धा से माना जाता था। इतनी अधिक श्रद्धा कि वे उच्चारित करने का साहस भी नहीं करते थे। अतः परमेश्वर का नाम अनुच्चारित बना रहा है। जब लिपिक लिखते समय परमेश्वर के नाम पर आते थे तब वे केवल व्यंजन लिखते थे, या वाह, बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट नहीं वरन असंभव हो जाता है। इसी कारण हम नहीं जानते कि परमेश्वर का नाम यहोवा है या यहोवा। हम केवल कल्पना कर सकते हैं। यहूदी परमेश्वर का नाम का उच्चारण नहीं करते थे। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अपने नाम का उच्चारण तेरे सामने करूंगा। लिपिक जब यहोवा का नाम लिखते थे तब वे स्नान करके नए कपड़े पहनकर अपनी कलम को अच्छे से धोकर नई स्याही में डुबाकर तब यावा लिखते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां परमेश्वर का नाम अनेक बार आया हो वहां उन्हें कितनी बार स्नान करना होता होगा। वे परमेश्वर के नाम के प्रति ऐसी श्रद्धा रखते थे, उनके विचार में परमेश्वर का नाम भी ऐसा पवित्र था कि मनुष्य के होठों पर नहीं आना चाहिए, उसका उच्चारण मनुष्य कभी ना करे। इसी प्रकार पढ़ते समय यदि वे परमेश्वर के नाम पर आते थे उस समय वे अपना सिर झुकाकर फुसफुसाते थे, क्योंकि उस नाम को वे जोर से नहीं बोलते थे, वे उस नाम को महान श्रद्धा अर्पित करते थे। ऐसी कोई संभव बात नहीं थी जिसका वे परमेश्वर के नाम से अधिक सम्मान करते थे। तथापि परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वचन को अपने नाम से अधिक प्रतिष्ठित करूंगा, मैं इसके साथ छेड़छाड़ की बात समझ नहीं सकता। मैं आप में से अनेक ऐसे लोगों को जानता हूं जो लिविंग बाइबल संस्करण से लगाव रखते हैं और उसके अनुवाद को पसंद करते हैं, परंतु मेरी समझ में वहां जकरिया के एक भाग का अनुवाद अत्यधिक निंदापूर्ण है। अध्याय 14 जहां लिखा है, तेरे हाथ के घावों का अर्थ क्या है? वो कहता है, ये घाव मैंने अपने मित्र के घर में पाए हैं। अध्याय 13 पद 6। लिविंग बाइबल में इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, तेरी पीठ पर पड़े चिन्हों का अर्थ क्या है? वहां लिखा है, ये मैंने अपने मित्र के घर में लड़ते हुए पाए हैं। उसका तर्क ये है कि वो यीशु के बारे में नहीं है, इसका अभिप्राय क्या है? एक और पद पर ध्यान दे, सेनाओं का यहोवा की वाणी है, हे तलवार मेरे ठहरे हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। जकरिया 13:7। ये पद यीशु ने उस समय कहा था जब उसे गतसमने के भाग में गिरफ्तार किया जाना था और उसके सब चेले उसे छोड़कर भाग गए थे। तब यीशु ने कहा था कि पवित्र शास्त्र पूरा हो सके, चरवाहे को मारो और भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। अब चूंकि ये संदर्भ मसीह को नहीं दर्शाता, इसलिए लिविंग बाइबल के लेखक ने स्वतंत्र रूप से अपना ही अनुवाद कर डाला। ओह, परमेश्वर के वचन के साथ छेड़छाड़ खानी करना मेरा साहस का काम नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का आदर अपने नाम के ऊपर करता है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। वे कहते हैं, केवल एक ही था जो वास्तव की परमेश्वर का नाम उच्चारण जानता था, और वो था महायाजक। वो इसे वर्ष में एक बार प्रायश्चित के दिन ही लेता था, जो कि सूर्य अस्त में आरंभ होता था। यौम किपूर प्रायश्चित के दिन, जब ये नरसिंगे फूके जा रहे हैं और लोग परमेश्वर का जय घोष जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि शब्द आया है, बकरा जंगल में लोप हो गया। इस हर्षोनाद जिसमें लोग जय जयकार कर रहे हैं, तब जय घोष करने वालों में याजक ही यहोवा का नाम पुकारता था, पर लोगों के स्वर इतने ऊंचे होते थे कि उस नाम को सुना नहीं जा सकता था। परमेश्वर ने घोषणा की, मैं अपने नाम की घोषणा करूंगा। परमेश्वर अपने नाम को बड़ी महिमा देता है, परंतु इससे भी बढ़कर अपने वचन को। तब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया की घोषणा मूसा से की। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। निर्गमन 33:21-23 पर मूसा की प्रार्थना अपना तेज मुझे दिखा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसके तेज से पूरी होती हैं। परमेश्वर मूसा के निकट से निकला कि वो उसके तेज की बाहरी ओज देख पाए, परंतु उसके मुख का नहीं, उसने परमेश्वर के तेज की प्रति छाया भर देखी, अन्यथा वो भस्म हो जाता।